उसके लिए लेके आए हम बड़ी दूर से, बहुत दूर से लेके आए हैं शाजिया मलिक को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम भाई, भाई कैसे हो आप? ठीक हो?
बाबा वैसे ही है।
बालों का हेयर स्टाइल आप ठीक क्यों नहीं बनाते हो भाई?
क्यों, क्या हो गया?
बालों का हेयर स्टाइल ठीक बनाया करो
ना। सही हो गया था?
हाँ अभी सही हुआ है, लेकिन पहले आपका बालों का हेयर स्टाइल ठीक नहीं था।
इधर उधर जा रहे थे।
हाँ इधर उधर जा रहे थे।
शुक्र करें कि बाल हैं थोड़े।
हाँ
बाल ही नहीं
है कुछ लोगों के, तो सिर पे बाल ही नहीं है।
हाँ कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी है कि जिनके पास बाल ही नहीं है।
बाल ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, तो फिर ये कैसे चलेगा, है ना?
इसलिए
अच्छा, तो अब ये किसी के पास बाल है, किसी के पास कुछ बिलवड नहीं है, तो वो दो दोस्त बैठे हुए थे ना, तो एक उसको कहता है यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मुझे छोड़ के भाग गई है। तो दूसरा उसको कहता है हाँ बस तू बोलता रहे मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरी किस्मत में नहीं थी। उसने कहा ऐसे करने से क्या होगा? कहता है बेस्ती कम महसूस होगी। लेकिन हम तो 770 पे जो लोग हैं, सर्दी और बेस्ती तो महसूस ही नहीं करते।
महसूस ही नहीं करते,
महसूस ही नहीं है ना। देखो हम कितने अच्छे हैं, हम
ना बेइज्जती लगेगी ना सर्दी लगेगी,
तो हम महसूस ही नहीं करते।
हाँ जी महसूस
नहीं, इसलिए हमारे लिए ये चीजें नहीं है।
नहीं नहीं,
ये आप जैसे कांची के मासूम लोगों के लिए है।
नहीं नहीं, वो हम लोग ऐसे ही है।
ऐसी
हवा चलती है हमको तो महसूस ही नहीं करते,
महसूस नहीं करते। बस ठीक है, इसीलिए जिंदा है -30 में। आपको पता है जब हम जिन दिनों में क्रिकेट चलती थी तो सिकंदर बख्त साहब का मैं इंटरव्यू ले रही थी, तो वो मुझे कहते थे, तुम लोग जिंदा कैसे रहते हो? मैंने कहा बस देख लो, हमारी स्किन अब गेंडे की तरह मोटी हो चुकी है। अच्छा जी, अच्छा जी, ना ये जो मस्करियां है ना माजद भाई, मुझे इसी में लगाए रखेंगे और मेन काम हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं माजद भाई। कल सलमान अहमद, जो कि आपको पता है जुनून के जो हैं गिटारिस्ट हैं और बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया है कि इस महीने के आखिर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाकिस्तान में होने वाली हैं। उन्होंने कल
प्रेडिक्शन दिए, ब्रेकिंग न्यूज है,
उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी, उन्होंने कहा बहुत कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में।
रोजाना बड़ा होता है, आप क्या कह रही है?
छोटा तो उस मुल्क में कुछ होता ही नहीं है ना,
मुल्क में होता ही नहीं है।
बच्चे भी बड़े पैदा होते हैं,
हम तो बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बड़े बड़े काम करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे जो बड़े बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बड़े काम करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वो आपने जरूर देखना है। और कुछ लोगों की बड़ी तारीफें उस पर आई हैं कि बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कल अब उनके नाम पढ़ के लाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, आज मैंने नाम नहीं पढ़े। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय बॉलीवुड। आप ये देखें, सीबीसी जेम पे आता है ये शो और बड़ा ही जबरदस्त है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो बिग डे है जिसमें कि आपकी शादी होने वाली है, यानी कुछ लोगों का तो एक ही बिग डे होता है एक, लेकिन कुछ लोगों के 3-4 होते हैं, तो अगर आप प्लान करें कि आपके 3-4 ऐसे बिग डेज हो सकते हैं, तो भी आप ये प्रोग्राम देखें, आपको लेटेस्ट जो बॉलीवुड के फैशंस हैं वो इसमें पता चलेंगे, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो है ये, आप देखें। ठीक है जी, इसके अलावा जनाब राजा ते बादशाह जो है वो, उनके पास आप जाएं, वो कहते हैं जी हम आपको राइट कवरेज देते हैं और बहुत सारे आपके पैसे आपको बचा कर देंगे। ऑल स्टेट एजेक्स एजेंसी के साथ हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं @6472903773 एंड राइट कस्टम कैबिनरी इंक। ये कहते हैं जी बड़ा ही जबरदस्त लेटेस्ट 3D जो हमारा कंप्यूटर डिजाइन है, उस पर हम आपकी सारी ये जो इटालियन यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग है उस स्टाइल पे हम करते हैं, किचन बाथरूम्स काउंटर टॉप्स आपके बनाते हैं, कैबिनेट्स बनाते हैं। तो अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं सेफ को @6472008473। ठीक है जी, अच्छा जनाब, पहली जो आज की सबसे बड़ी खबर है टूडो साहब से रिलेटेड है। टूडो साहब जो हैं उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि ट्रंप साहब जीत जाएं। तो वो कहते हैं जी कि अगर ट्रंप साहब जीत जाएंगे तो उसके लिए हमने अभी से स्ट्रेटजियां बनानी शुरू कर दी हैं। और इन्होंने कहा जी कि अब हम एक टीम कनाडा एंगेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, और ये जो इनका फाइनल डे था यहां पे कैबिनेट का रिट्रीट जो मॉन्ट्रियल में चल रहा था उसमें ये ट्रूडो साहब ने सारी बातें की हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पार्लियामेंट जो है नेक्स्ट वीक वापस आ रही है। तो वो कहते हैं जी कि हम सबके साथ मिलकर बैठेंगे, बताएंगे कि भाई हम क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं अगर ट्रंप साहब वापस आ जाते हैं, क्योंकि यूएस इलेक्शन जो है आने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो वो कहते हैं जी कि उसके बाद जो भी कोई आएगा उसमें हमें चैलेंजेस हो सकते हैं कनाडा को, तो क्योंकि ट्रंप साहब तो वैसे भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो उन चैलेंजेस को हमने कैसे बेस्ट तरीके से निपटना है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एनर्जी मिनिस्टर जो फिलिप शैम्पेन साहब हैं और इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मैरी इंग हैं, उन्होंने कहा जी कि इनको हम मैं काम दे रहा हूं कि प्रोविंशियल और टेरिटोरियल लीडर्स जो हैं उनसे बात करें, जो कि एक्सपर्ट्स हैं लेबर बिजनेस एकेडेमिक्स में, ताकि ये इनको हम आगे लेके जाएं। और हमारी जो कनाडा की एम्बेसडर टू यूएस है क्रिस्टन हिलमन, उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली जो हैं, उनका भी कहना है जी कि हम एक पोटेंशियल जो आउटकम हो सकता है 2024 का अमरीका में, उससे निपटने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। चैंपियन साहब ने आज रिपोर्टर्स से बात करते हुए यह भी कहा था कि जी हमारी जब 2002 में भी बड़ी सख्तियां चल रही थी और यूएस की बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी, उस वक्त भी हमने बड़ा सक्सेसफुली जो है लॉबी करके काम किया था। इसके अलावा बाइडन साहब ने जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट दिया था, जिसके लिए हम अपनी ईवीज के ऊपर हम चाहते थे और हमारे जो बैटरीज हैं उसके ऊपर हम चाहते थे कि यूएस टैक्स क्रेडिट्स ना लगें, उसके लिए हमें काफी फाइट करना पड़ा। तो पहले तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी सख्ती दिखाई, लेकिन फिर वो हौले हौले जो है सॉफ्ट हो गए। तो इसलिए हम पूरी स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं कि जो कोई भी आए, बाइडन साहब आए या कि ट्रंप साहब आए, हम उनके साथ नई पॉलिटिक्स में कैसे चैलेंजेस को फेस करेंगे, उसके ऊपर जो है आने वाले दिनों में बात हो सकती है। एनडीपी जो है जी वो भी अपना 3 डे का कॉकस मीटिंग कर रहा है एडमंटन के अंदर, अल्बर्टा में, और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर ज्यादातर मुद्दे जो जगमीत सिंह साहब करेंगे वो हेल्थ केयर, अफोर्डेबिलिटी और नेशनल जो कैंपेन चलानी है नेक्स्ट इलेक्शंस में, उसके ऊपर वो बात करेंगे। जगमीत सिंह साहब जो है उन्होंने एडमंटन सेंटर के जो कैंडिडेट हैं त्रिशा एस्टा ब्रुक्स, उनके साथ जाके डोर टू डोर नॉकिंग भी की, लोगों से उनके मसाइल पूछे। उन्होंने कहा जी कि हम जो अब बजटरी जो मैटर्स हैं और कॉन्फिडेंस जो है हमारा लिबरल पार्टी के साथ आने वाले दिनों में, जो हमने कहा था कि 2025 तक रहेगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हम दोनों ने जब मिलकर काम किया तो आपने देखा ही है कि डेंटल केयर प्रोग्राम और ये जो हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि जीएसटी रिबेट्स को डबल करें, उसके ऊपर काम हुआ है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या अच्छी डील बना सकते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो ये सारी बातें आज जगमीत सिंह साहब ने कही। ऑन्टेरियो के अंदर जनाब जो केजी का करिकुलम है उसको अपडेट किया जा रहा है। इस सारी की जो इन्फॉर्मेशन है आज स्टीफन लेचे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आज दी है। उन्होंने कहा जी कि बैक टू बेसिक्स लर्निंग इन रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स जो है उसके ऊपर हमारा स्ट्रेस रहेगा और ये स्टार्ट करेगा सारा प्रोग्राम हम 2025 में। वो कहते हैं जी कि ये जो करिकुलम है इसके अंदर हैंड्स ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग होगी किड्स के लिए, ताकि उनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उनको अच्छा किया जा सके, और इससे पहले कि वो जाएं ग्रेड 1 में तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम एलिमेंट्स ऑफ लिटरेसी चेंजेस इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड, लेटर रिलेशनशिप्स और फोनिक्स की नॉलेज जो है और वोकैबुलरी जो है उसको डेवलप करने के ऊपर जोर देंगे। मैथ्स की इंस्ट्रक्शंस को हम जो है वो चेंज करेंगे ताकि बच्चों को कोडिंग और पैटर्न्स और फ्रैक्शंस जो है वो अच्छे से समझ आ सके, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे रीच कर सकें अपने लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं आज एजुकेशन मिनिस्टर ने किया। इसकी और जैसी डिटेल्स आएंगी तो फिर हम आपके साथ और करेंगे। एनवायरमेंट कनाडा जो है उसने कहा जी कि मच ऑफ जीटीए और ट्रोनो जो है उसके अंदर बेतहाशा हैवी स्नोफॉल रहेगी, जिसमें कि ट्रोनो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, पिकरिंग, ओशावा, वॉन, रिचमंड हिल, मार्कम, बर्लिंगटन, ओकविल, हॉल्टन हिल्स, मिल्टन, हमिल्टन, इसके अंदर 5 to 10 सेंटीमीटर तक स्नो आ सकती है। उसकी वजह से जो हाईवेज, रोड्स और वॉकवेज एंड पार्किंग लॉट्स जो हैं वो काफी मुश्किल होंगे उसके अंदर गाड़ी को मूव करना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उन्होंने कहा पीक टाइम के अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर्स पर आवर जो है वो स्नो गिरेगी, और लेकिन लेटर इन द वीक जो है टेम्परेचर्स माइल्डर होने शुरू हो जाएंगे। डे टाइम हाई ऑफ 4 डिग्रीज जो है वो आने वाले दिनों में ट्रोनो में और जीटीए में देखा जा सकता है। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन जो है, तो प्लीज बहुत सावधान रहें क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी है जी, तो बहुत ज्यादा आपको एहतियात करने की जरूरत है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है जी वो अफ्रीका के दौरे के ऊपर हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे जो चाइना है अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। वहां पे चाइना ने बहुत हैवीली जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अब अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो अब अमरीका चाहता है कि कहीं अफ्रीका भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो वहां पे हालांकि बड़ा क्राइसिस चल रहा है, वहां पे गैंग वॉर्स चल रही हैं और लोगों को अब्डक्ट किया जा रहा है, फिर भी वहां पे ये पहुंचे हैं उनके साथ बात करने के लिए। चार कंट्रीज जो है उनका ये टूर करेंगे, अटलांटिक कोस्ट पे, केप वर्डे, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और एंगोला में। और वो कहते हैं जी कि यहां पे सहल का जो ये सारा एरिया है इसमें काफी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जो बाइडन गवर्नमेंट का जो मैसेज है उसको मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि 2022 में इन्होंने अफ्रीकन जो लीडर्स थे उनको वेलकम किया था और कहा था कि हमारा फोकस अब जो है अफ्रीका के ऊपर रहेगा और जो भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी करेंगे। ब्लिंकन साहब ने जो है वो बाइडन साहब की बात दोहराते हुए, क्योंकि बाइडन साहब ने कभी दौरा नहीं किया अभी तक अफ्रीका का, तो बाइडन साहब ने जो ब्लिंकन साहब हैं उन्होंने उनकी बात दोहराते हुए कहा कि हम यहां पे प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और हमें पता है कि हमारा और आपका फ्यूचर एक जैसा है, जो यहां पे अफ्रीकन वॉइसेज हैं वो बड़ी लीडिंग वॉइसेज बनती जा रही हैं, तो हम आपके साथ ग्लोबल कॉन्वर्सेशन डिफरेंट इशूज के ऊपर करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि हम कमिटेड हैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए और केप वर्डे जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग और प्रिंसिपल्ड वॉइस है और हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद अब ब्लिंकन साहब जो है शाम को जो है वो निकल गए थे आइवरी कोस्ट के लिए, वहां पर ये सबसे पहले तो एक मैच देखेंगे जो इक्वेटोरियन गिनी इन अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में हो रहा है, और वहां उसके बाद फिर जो इनके लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो है आयरोनिकली जिस ओलंपिक स्टेडियम में बैठे होंगे जो 60,000 सीटिंग का है उसको चाइना ने बनाया है, और अभी लास्ट वीक ही चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर थे वांग जी वो अभी यहां का दौरा करके गए हैं। बहरहाल जी क्या किया जा सकता है, अब मैच वहां पे है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब को वहां पे बैठना पड़ेगा। ये जो खबर है जनाब आज इसने काफी लोगों की आंखें चौंकाई हैं, लेकिन जाहिर है कि पयान तुसी हुण कुआं सारा खाली कर दोगे तो फिर तो यही कुछ होएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम जो जब से ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है और डिफेंस सेक्रेटरी जो है अमरीका के लॉयड ऑस्टिन साहब, उन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया था अप्रैल 2022 के अंदर कि जी हम यूक्रेन को दबा दब जो है वो हेल्प देंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम वो कह रहे हैं जी कि अब अमरीका के पास पैसे नहीं है, अमरीका के पास पैसे नहीं है, राइट हाँ जी। यूएस जो है वो होस्ट कर रहा है एक गैदरिंग ऑफ 50 कंट्रीज ताकि जो है उसमें ना सिर्फ पैसे जमा किए जा सके बल्कि एम्यूनिशन और मिसल्स जो हैं वो भी कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को दिया जाए। उसकी वजह यह है कि ये बहुत लंबा बजट जो कि बाइडन साहब ने कांग्रेस को अप्रूवल के लिए दिया था कांग्रेस ने अभी तक उनको नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो गैप आ गया है अब पैसों का ये आप अपने एलाइज को बोले इसको भरने के लिए। ब्रसल्स के अंदर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने आज अनाउंस किया है कि हमको 1.2 बिलियन $ जो है ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और चाहिए है टू बाय 222,000 राउंड्स ऑफ 155 mm म्यूनिशन जो कि अभी तक यूक्रेन यूज करता आया है। पेंटागन ने अनाउंस किया है जी कि हमने जो सिक्योरिटी असिस्टेंट यूक्रेन को दी थी उसके बाद से अब कांग्रेस के पास हमने अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है फंड्स के लिए, एंड कैन यू इमेजिन हाउ मच इन्होंने अप्रूवल के लिए कांग्रेस को कहा है, 110 बिलियन $ मोर फॉर यूक्रेन और इसराइल के लिए, और यूएस और मेक्सिको की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके लिए उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस अप्रूव करे, जो अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया और उसकी वजह से कांस्टेंट टसल चल रही है कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच में। कांग्रेस का कहना है कि यूएसए अभी तक यूक्रेन की वॉर के ऊपर 44.2 बिलियन $ लगा चुका है जब से ये वॉर शुरू हुई है फरवरी 2022 में, जिसमें के 23.6 बिलियन जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री स्टॉक पाइल था उससे लिया गया था, और 19 बिलियन $ जो थे वो भेजे गए थे इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर आइटम्स। एडिशनल 1.7 बिलियन $ जो थे वो स्टेट डिपार्टमेंट ने दिए थे। लिहाजा अब जो इन्होंने ये जो नई डिमांड की है कि अब हमको और हमारा ये अप्रूव करें 110 बिलियन $, उसके ऊपर अभी कांग्रेस जो है बिल्कुल आगे चलना नहीं चाहती है। मतलब ये नंगा कर देता है इन्होंने अमरीका नु, है सारा पैसा उन्होंने देता है, और पायन जरा चैन करो बाइडन पागी की हो गया तो जनाब ये है, तो इसलिए पेंटागन कह रही है पायन साढ़े को पैसे नहीं है। रॉयटर्स की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक जो है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक एक दफा खबर है, हमने आज से 2 महीने पहले भी आपके साथ ये की थी और आज ये फिर से जो है रॉयटर्स ने इसको स्टोरी को कवर किया है। इसके मुताबिक CIA एक दफा से फिर जो रशियन इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप CIA के साथ हाथ जोड़ें, आप रशिया के साथ यानी गद्दारी करो और आप हमको अंदर की इंफॉर्मेशन दो तो हम आपको बड़े लंबे पैसे देंगे, है जी। ये आज रॉयटर्स की खबर है, एक वीडियो सामने लेकर आया है CIA, और उस वीडियो के अंदर वो दिखा रहे हैं कि एक 35 ईयर ओल्ड आदमी है और वो ये कह रहा है कि जी मैं जो हूं रशिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं पैरा ट्रूपर था, लेकिन जो असल हमारा एनिमी है रशिया का वो इसके अंदर ही है, जो कि करप्ट लीडरशिप और अलीट हैं, जिन्होंने के मुल्क को पैलेसेस और यॉट्स और बड़ा हाई लाइफस्टाइल जो है उसके लिए बेच दिया है, जबकि जो सोल्जर्स हैं वो कच्चे टमाटर जो हैं वो उसको च्यू कर करके जिंदा हैं, और प्री हिस्टोरिक उनके पास वेपन है, इसलिए मैं ये सब छोड़ के CIA को ज्वाइन कर रहा हूं। उसके बाद जो दूसरा सीन आता है उस वीडियो में वो ये दिखा रहा है कि बहुत ही एक वेल ड्रेस्ड आदमी है जो कि फोन के जरिए कांटेक्ट कर रहा है CIA को, और उसके हालात जो हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। क्रेमलिन ने इस वीडियो के ऊपर जाहिर है कि बेतहाशा रिएक्शन शो किया है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सारे का सारा झूठ है, हमारे कोई प्री हिस्टोरिक वेपन्स नहीं है, लेटेस्ट वेपन्स हैं जो हम अपने फौजियों को देते हैं, और हम अपने फौजियों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, और ये जो करप्शन के एलिगेशन भी हैं ये सब झूठ है, और ये हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। व्हाट इज दिस माजरा?
या लुक एट दैट,
तुसी अगले बंदे नु कह रहे हो तुम गद्दारी करो अपने मुल्क से, पाया नहीं कोई अच्छी बात है? आपने अभी तक जो है एडवर्ड स्नोडन को और वो बेचारे जूलियन असांज को छोड़ा नहीं है, दूसरों को आप कह रहे हो गद्दारी करो, पाया ने की चल रहा है? काले चश्मे वाले पाया ने इन्हू आके पढ़ो, इन्होंने मैं खबर दी मैं ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, जो चाइना है वहां का जो जेंगजियांग काउंटी है उसमें बहुत ज्यादा आया था लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसमें कि बेतहाशा वहां पे नुकसान हुआ है, तो अभी भी डजन्स ऑफ पीपल जो हैं वो डेबरी के नीचे फंसे हुए हैं, और यहां पे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स जो हैं अभी भी काम कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो दो विलेजेस के अंदर जो लैंडस्लाइड्स आई थी तो उसके अंदर जो लोग हैं उनको ढूंढा जाए। तकरीबन 18 हाउसेज जो थे वो कम्प्लीटली बैरी हो गए थे, ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुई थी जब ज्यादातर लोग रात को सो रहे थे, इसमें से 47 लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, और 30 आवर्स से ये जो है ये रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है, और बहुत सारे अभी भी मिसिंग हैं इसमें, और वो कह रहे हैं जी कि रेस्क्यूअर्स दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, क्योंकि बेतहाशा यहां पे सर्दी भी है, सब जीरो टेम्परेचर्स हैं, जो पहाड़ियां हैं आसपास की सब वो ढकी हुई हैं स्नो से। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि तमाम की तमाम एफर्ट्स लगाई जाए और लोगों को बचाया जाए। इसके अलावा सोल्जर्स जो हैं उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी मशीनरी और रिसोर्सेज हैं जिसके से के मलबा हटाया जा सकता है। अभी तक इस इलाके में से 500 लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश है, लेकिन लोगों का डर है कि जी यहां पे ज्यादा लोगों की डेथ्स आपके सामने आ सकती हैं। यूके के अंदर भी आज जहां पे कि आपको पता ही है कि हड़तालें चलती रहती हैं अब यूके में, आज एक और नया मुद्दा आ गया। हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि एक लॉ लेकर आ रहे हैं ऋषि सुनक साहब, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि जो कोई भी असाइलम सीकर्स हैं वो बस मतलब बुथी उठा के इंग्लैंड ना आ जाया करो, उनको हम जो है हमारे जो प्रोसेसिंग जो है वो सेंटर्स जब आप बोट से इलीगली आएंगे तो हम आपको एक थर्ड सेफ प्लेस पे भेजेंगे जो कि रवांडा होगी। इसके ऊपर जनाब आज फिर से एक हंगामा हुआ है, उसकी वजह यह है कि जो यहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उन्होंने ये जो वोटिंग इन्होंने की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में और इस बिल को पास किया था कि एक थर्ड सेफ प्लेस रवांडा में इसको भेजें, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आज उसको रोक दिया है। यहां पे जो वोटिंग हुई है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसमें से 214 लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, 171 ने कहा कि ये ठीक है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उनका ज्यादा जो है वो चलती नहीं है। जाहिर है कि वो दे आर नॉट रियली द मेकर्स ऑफ लॉ, हाउस ऑफ कॉमन्स बनाता है, लेकिन वो चीजों को डिले कर सकते हैं, और वही उन्होंने कहा है कि हम देखना चाहते हैं और गवर्नमेंट पूरी एविडेंस दे कि रवांडा जो है वो क्या सेफ है कि नहीं है इन असाइलम सीकर्स के लिए। ऋषि सुनक साहब ये जो लेकर आए थे लॉ सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इलीगली हमारे मुल्क में आ रहे हैं उनके सारे पेपर वर्क जब तक नहीं होते उनको एक थर्ड सेफ प्लेस में रखा जाएगा और उसी सिलसिले में उनको रवांडा भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि रवांडा में उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस। इंग्लैंड ने कहा कि हम इतने बड़े इलीगल नंबर को यहां पे नहीं रख सकते, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इनकी अपनी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके अंदर भी वो खुश नहीं है कि इस तरह से किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आएंगे। आपको पता ही है कि ऋषि सुनक साहब जो हैं फिर जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं इस साल में उसमें वो फिर से जीत के पावर में आना चाहते हैं, हालांकि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि लेबर पार्टी जो है वो इनसे बहुत आगे चल रही है, लेकिन फिर भी ये जो है आना चाहते हैं पावर में, और उसके लिए जो है उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने आज बहुत ज्यादा डिनाउंस किया है जो बाबरी मस्जिद को गिरा के उसके ऊपर राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनाया गया है उसके ऊपर आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने भी कल इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज किया था और कहा था कि ये शो करता है ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म यहां पे इंडिया के अंदर। तो भरत जी, ओआईसी ने कहा है कि हम जो हमारी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसने लास्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर गौर किया था और हमारा जो जनरल सेक्रेटेरिएट है वो इस तरह के एक्शंस को डिनाउंस करता है कि जिसके के अंदर आप इस्लामिक लैंडमार्क्स जो कि 5 सदियां पुराना था उसको आपने हटाया है और उसको हटा के आप मंदिर बना रहे हैं उसकी जगह पे, तो ये चीजें जो हैं ये ठीक नहीं है और इसलिए हम इसको ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। तो उन्होंने आज काफी इसके ऊपर एतराज किया, मगर पायान जाहिर है कि एतराज ही कर सकते हैं और तो इंडिया के नाल दबादब ट्रेड चल रही है उन्होंने, हैं जी, ट्रेड तो अपनी खराब नहीं वो करते। एंड जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। आपको पता ही है कि नान एंड कबोब के बड़े जबरदस्त खाने होते हैं और हर कोई एंजॉय कर सकता है क्योंकि ज्यादा नमक मिर्च इसके अंदर नहीं होते हैं, हेल्दी तरीके से बनाते हैं, ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं। तो नान एंड कबोब के ऊपर अगर आप जाना है तो उनकी नई लोकेशन जो है खासतौर पर बड़ी ही खूबसूरत उसका डेकोर है, उधर आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इनका जो नया लोकेशन है वो है 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3, इसके ऊपर आप जाएं और इनको फोन भी कर सकते हैं जाने से पहले ऑर्डर डालने के लिए। इनका नंबर है 4162858191। एंड जनाब, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट, फैसल चट्टा साहब होते हैं, इनके पास जाएं, इनके भी दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में है, इसका नंबर है 9052323663 और एक आप ओकफिल में जो नया खुला है लास्ट ईयर 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर, वहां पर भी आप जा सकते हैं, इनका नंबर है 9052262294। एंड जनाब, चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल 1400 लोगों की आप अपनी फैमिली की या बिजनेस की इवेंट यहां पे कर सकते हैं, 32 रूम लग्जरी होटल है ये और बड़े जबरदस्त यहां पे खाने और जो हैं वो होते हैं और हर तरह का खाना है यहां पे जो भी आप बनवाना चाहते हैं और बड़ा आइडली लोकेटेड है 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823 के ऊपर। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है आज जी उसने एक समरी भेजी है केयर टेकर फेडरल कैबिनेट को, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सिचुएशन अपकमिंग जनरल इलेक्शंस में हो सकता है, तो 277,000 पाकिस्तान मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उनको हम यहां पे लगाना चाहते हैं। ये इन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि पिछले साल से बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स में तेजी आ गई है और बहुत ज्यादा वायलेंट अटैक्स हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के ऊपर जब वो निकले हुए इलेक्शनियरिंग के लिए। कलीम उल्ला खान जो कि केपीके 104 से नॉर्थ वजीरस्तान में कैंपेनिंग कर रहे थे जब उनको गोली मार के मार दिया गया था, इसके अलावा पीटीआई के शाह खालिद को स्वाबी में मारा गया था और पीएमएलएन के असलम बुलेदी, एनडीएम के मोहसन दावर, नेशनल पार्टी के अब्दुल रशीद, सेनेटर खोडा अकरम दस्ती, इन सब के ऊपर भी अटैक्स किए जा चुके हैं। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर जो है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग इस सिलसिले में बनाई थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान मिलिट्री को भी कहा गया है कि आप हेल्प करें, जिन्होंने कहा है कि हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ आई है कि उनको एक इंटरिम बेल दी गई है, उनकी रिस्टोर की है लाहौर हाई कोर्ट ने इन 7 केसेस रिलेटेड टू मे 9 राइट्स और अपने ऑर्डर में इन्होंने जो ये वर्डिक्ट दिया है कि खान साहब को दिया जाए इंटरिम बेल जो कि जिसके लिए प्ली डाली थी खान साहब ने। 2 मेंबर बेंच हेडेड बाय जस्टिस आलिया नीलम उन्होंने अपना ये जजमेंट दिया है और उन्होंने रिजर्व किया था ये इसके ऊपर जजमेंट जो था पहले और आज उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। ये वर्डिक्ट उस वक्त आया जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो उसने रिजेक्ट की थी खान साहब की पिटीशन सीकिंग हिज बेल एक्सटेंशन। ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं एजाज अहमद बुट्टर उन्होंने जो है वो वर्डिक्ट दिया था पहले अगस्त 11th लास्ट ईयर दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, तो ये आज खान साहब के लिए अच्छी खबर आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब ने कहा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अदारे को मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं इस मसले को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बात उस वक्त की जब ये इंटरनल एक इंक्वायरी जो बिठाई गई थी नॉन फिक्सेशन ऑफ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब की प्ली के अगेंस्ट जो ईसीपी का जो ट्रिब्यूनल था उसने इनके साथ किया था। ये जो केसेस थे इस सिलसिले में उन्होंने कहा था जी कि ये जो है ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की मैनिपुलेशन में शामिल होती हैं उसको मैं फिक्स करूंगा और अगर बाकी के पुराने मसले फिक्स किए जा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं किया जा सका। ये सारी बातें आज जो हियरिंग चल रही थी सूरी साहब की जो 2019 का केस था उस सिलसिले में उन्होंने की जिसमें कि कहा जा रहा था वो जो प्ली डाली थी सूरी साहब ने 2019 के केस में उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसने डिक्लेयर किया था इनका इलेक्शन फ्रॉम एनए 265 क्वेटा 2 एज वॉइड ऑन सेप्टेम्बर 27 और इन अक्टूबर 2019 थ्री मेंबर बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट जो था उसने सस्पेंड किया था इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और रेस्टोर की थी इनकी मेंबरशिप और उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक ये रेस्टोर रहेगी जब तक एक कोर्ट इसका डिसीजन नहीं देगा। बलोच लीडर लश्करी रईसानी ने चैलेंज की थी सूरी साहब की जो विक्ट्री थी क्वेटा की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन 2018 इलेक्शन और उन्होंने कहा था जी कि इनको सही तरह से इलेक्ट नहीं किया गया इसलिए मैं चैलेंज करता हूं जबकि ये मामला कोर्ट में पहुंचा था और फिर आज जो है ये सारी वर्डिक्ट जो है सामने आई है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो है सुहेल महमूद साहब उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक मैं रिटायर नहीं हुआ था तो जो साइफर की कॉपी है वो फॉरेन मिनिस्ट्री में वापस नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट आज इन्होंने दी है अलोंग विद जो फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर इरशाद अवेद भट्टी ये अपने सारे जो हैं लोग अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे बिफोर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कोर्ट। इन्होंने कहा जी कि जब मेरी रिटायरमेंट हुई थी सितंबर 2022 में उस वक्त तक ये वापस नहीं आया था उसके बाद अगर आया हो तो मुझे नहीं पता। शेख महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर जो है वो इतराज उठाए इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो है जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसको बार बार काट रहे थे उसके अंदर इंडल्ज कर रहे थे। शेख महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि जब विटनेस बोल रहा होता है तो उसको आप इंटरफेयर नहीं करते उसके मुंह में आप जो है वर्ड्स डालने की कोशिश ना करें। इस मौके पर फिर इमरान खान साहब भी आ गए और उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा ड्रामा सिर्फ डोनाल्ड ड्रू जो कि यूएस डिप्लोमैट था जिसके बारे में कहा जाता है कि अलेजली उसने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल की थी उसको बचाने के लिए जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल जी ये जो आज सुहेल महमूद साहब की आई है और इसके बाद फिर अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं यूसुफ नईम खोकर और इस्लामाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके और बाकी लोगों के जो है वो वेट किया जा रहा है कि स्टेटमेंट्स आए तो पता चले कि ये क्या हुआ है साइफर केस में। एक रिपोर्ट आई है जी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे ज्यादा पिछले जो 20 साल में जिन्होंने हुकूमत की है उसमें से जो नवाज शरीफ साहब का जो दौर था वो सबसे अच्छा रहा है। इवन नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई से भी अच्छा किया था और पीडीपी का तो खैर जो है बहुत ही उन्होंने खराब उसकी रेटिंग बताई है। उन्होंने कहा जी कि हम जो है चीजें देखते हैं ऑन द मेजर ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी जिसके अंदर हम एड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स और इन्फ्लेशन तो हमें लगता है कि हमने जो अपने कैलकुलेशन की है उसमें नवाज शरीफ साहब का जो जमाना था एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं उस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो जो है तरक्की की है और वो सबसे अच्छे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हायर वैल्यू जो है वो इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स तो थे सिटीजन्स के लेकिन फिर भी चीजें उनके जमाने में बेहतर हुई और अभी भी वो कह रहे हैं कि यही देखा जा रहा है कि मुश्किलात हैं मुल्क के लिए और नवाज शरीफ साहब जो है फिर से पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं जबकि खान साहब जो है वो जेल में हैं जबकि खान साहब जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी कि जो गैलप का भी सर्वे आया था उसमें जो इमरान खान साहब की अप्रूवल रेटिंग है वो 57% है कंपेयर टू एनी अदर जो है वो लीडर नवाज शरीफ साहब की। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा जी कि 36% अप्रूवल रेटिंग दी लेकिन हौले हौले 52% पे आ रही है तो हो सकता है लोग जो हैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें और वो कह रहे हैं जी कि ये रिपोर्ट जो है ये शो करती है कि पहले तो जो कोई काम आपने किए जो किए लेकिन अब जो कोई भी हुकूमत लेगा उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो जनाब अब ये कितनी सही है चीजें हमें मालूम नहीं है। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली इनकार कर दिया है कि वो बिल्कुल जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उनको अपने इलेक्शंस के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंड्स हम फ्रीज कर रहे हैं जब तक के इलेक्शन के रिजल्ट सामने नहीं आ जाते। लोकल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ये जो है डेवलपमेंट के फंड्स उसको अपने इलेक्शन पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। हां लेकिन जो रोजमर्रा के सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के जो काम है वो लोकल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और ये जो टेंडर्स हैं ये बिल्कुल ये जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 6 फरवरी को अपनी तमाम की तमाम इलेक्शनियरिंग जो कैंपेन्स हैं वो खत्म कर देंगे अंडर सेक्शन 182 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017, और जिस किसी ने इस बात को ना माना तो फिर उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। बलोच प्रोटेस्टर्स जो आपको पता ही है बहुत दिनों से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के जो बाहर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ये जो फोर्स डिसअपियरेंसेज होती हैं और ये जो लोगों को हरास और मारा पीटा जाता है, उन्होंने आज अपनी जो ये प्रोटेस्ट है ये खत्म कर दी है। उसकी वजह ये है कि जी नेशनल प्रेस क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को एक लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था जी कि ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक को भी और हमको भी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि ये जहां पे बैठे हुए हैं वो रास्ता है नेशनल प्रेस क्लब का जहां पे कि हम अपने सेमिनार्स और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन चूंकि ये बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें इससे आ रही हैं, हम अपने ना प्रोग्राम कर सकते हैं ना यहां पे ट्रैफिक का फ्लो सही है। इसके ऊपर बात करते हुए डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है, ये शीज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस सिटिंग। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो मीडिया और जर्नलिस्टों को वो लोग जिनकी की आवाजें सुनी नहीं जाती या निगलेक्ट की जाती हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ही जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको लेटर लिखा है। उसके बाद बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, इवन कुछ जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंडेम किया एनपीसी का ये जो लेटर जो है इस्लामाबाद पुलिस को भेजा गया उसको। तो अब पता नहीं है कि अब ये कहां जाएंगे। बहरहाल नेशनल पुलिस क्लब के प्रेस क्लब के लोगों ने कहा है कि भाई इनको जो है भेजा जाए किसी और जगह पे और यहां से इनको हटाया जाए। तो जनाब देखेंगे अब क्या होएगा। यूके के अंदर जो हाई कोर्ट है उनके जज जस्टिस चेम्बरलेन जो हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है एप्लीकेशन एमक्यूएम के फाउंडर जो हैं अल्ताफ हुसैन की, और ये जो थी इनके जो पुराने मेंबर थे तारिक मीर साहब एमक्यूएम के राबता कमेटी के, उन्होंने इनके ऊपर एक डेफिमेशन केस डाला था। हुआ यह था कि ये जिस वक्त एक इवेंट कर रहे थे अपना, बड़े ये स्टॉन्च किस्म के लॉयलिस्ट थे एमक्यूएम के, लेकिन तारिक मीर साहब एक इवेंट कर रहे थे सन चैरिटी डिनर का, जिसके के बाद जो एमक्यूएम की वेबसाइट थी उसके ऊपर कुछ वर्कर्स ने डाल दिया कि ये बहुत ही डिसऑनेस्ट फ्रॉड और करप्ट आदमी है और ये चैरिटी जो थी ये तो हुसैन की थी और ये इन्होंने इससे ले लिया अपना लेविश लाइफस्टाइल बनाने के लिए, और ये सारा ये लाइव जो इसकी जो चल रही थी ये जो इवेंट चल रहा था ये अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था और इनको बदनाम किया था। अल्ताफ हुसैन साहब तो इस इवेंट पे नहीं आए थे, लेकिन जो इनके बाहर खड़े होकर नारे लगाए उस होटल के और इनको बदनाम किया उसके ऊपर इन्होंने एक डेफेमेशन केस जो है डाला था। अल्ताफ हुसैन, अथर अजीज, हाशिम अजीज, मुइन अहमद, नदीम परवेज, सोहेल खानजादा, नासिर अली, यास्मीन नोवेन के खिलाफ। तो आज जज ने कहा है, जज को जब इन्होंने कहा जी कि मेरा जो फैसला है आप अलहदा करें इनसे, तो जज ने इनको कहा कि आप चूंकि पार्ट ऑफ दिस होल थिंग है तो इसलिए आपका जो केस है बिल्कुल अलहदा से नहीं चलाया जा सकता, तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसको रद्द किया जाता है, आप सबका मुकदमा जो है इकट्ठे ही चलेगा यूके की कोर्ट में। खुश हो पाए
हो गया जी
चलो जी ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो राम मंदिर है ये जब से बना है कल से, तो अब यानी कि इसकी जो इनॉग्रेशन हुई है उसके बाद से काफी प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू हो गए हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जो चर्च हैं उनके जो क्रॉस हैं उनके ऊपर बीजेपी ने अपने झंडे लगाए हैं कुछ लोगों ने उसके, और जो है वो काफी डराया धमकाया भी है चर्च के लोगों को। वायलेंस जो है वो और भी इलाकों में अब फैलती जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पे एक स्क्रीनिंग की जा रही थी राम के नाम डॉक्यूमेंट्री, जिसको के बनाया है आनंद पथवर्धन ने, और इसको डिस्टर्ब किया हैदराबाद में और केरला में, और जो इंस्टीट्यूशंस थे वैसे ज्यादातर उनको मना किया गया था कि ये जो है आप नहीं चलाएंगे डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि शायद इसमें कुछ चीजें जो हैं ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो हर्ट करेंगी हमारी जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनको। तो यहां पे जब स्टूडेंट्स को मना किया गया तो ये बहुत सी जगहों पे जो इन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे इस फिल्म के उसको फाड़े गए। नेशनल जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है उन्होंने कहा कि जी हम बहुत ज्यादा पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम बाबरी मस्जिद को याद कर रहे थे जब ये हमारे पोस्टर्स जो हैं ये फाड़ दिए गए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहां पे कुछ लोग जो हैं कैंपस के अंदर घुस आए थे अपने सेफ्रॉन स्कार्फ्स के साथ और वो नारे लगाने लगे जय श्री राम। तो उन्होंने जो है ये जो है जो मस्जिद जो ये برباد کی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ ہم ایسی ہزاروں بابری مسجدیں جو ہیں ہندوستان کے اندر برباد کریں گے. پولیس نے کہا جی کہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کو پکڑا ہے اور ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جو زخمی ہو گئے ہیں سکافلز میں. بعد میں پتا چلا جی کہ ان کو ڈیکن پولیس اسٹیشن لے کر گئے ہیں, کوئی علاج شلاج کے سلسلے میں لے کے نہیں گئے. اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں منکب نکوہ ہم, انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر بے تحاشا وائلنٹلی اٹیک کیا گیا, اس کو مارا پیٹا ہے ہندو گونز نے اور اس کی ٹی شرٹ پھاڑ دی ہے, اس کو بڑا جو ہے زخمی کیا ہے. جو ایسوسی ایشن ہے اس نے ایکیوز کیا ہے انسٹیٹیوٹ کی سیکیورٹی کو, انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں آئے, تم نے کیوں نہیں اس کو بچایا, اول تو تم نے آؤٹ سائڈرس کو اندر کیسے آنے دیا. تو کافی ہنگامے وہاں پہ ہوئے. اس کے علاوہ ممبئی کے آؤٹسکرٹس میں بھی دو ڈفرنٹ واقعے ہوئے ہیں, ایک میرا روڈ پہ اور ایک پنول میں. وہاں پہ بھی پولیس نے کچھ ہندو ریلیز کو مسلم پاپولیٹڈ ایریاز میں جانے سے منع کیا, وہ منع نہیں ہوئے, وہاں پہ گئے. ایک تو کچے محلہ میں گئے اور ایک ریلوے اسٹیشن جو ہے پنول کا ادھر گئے, وہاں پہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے, ان کی لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ جس میں کہ ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا, لوگ کافی زخمی ہوئے. ایک جو سب سے بڑا آج افسوس کا واقعہ, جو اکیڈیمکس جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی, آپ کو پتا ہی ہے کہ ہندوستان کے ٹاپ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے, آئی آئی ٹی بامبے کے اندر آج ایک گائے کا شیڈ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر پھر جو وہاں کے اکیڈیمکس ہیں انہوں نے کہا جی کہ آئی آئی ٹی جیسے زبردست انسٹیٹیوٹ میں ایک گائے کا تبیلا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گائے کا تبیلا جو ہے اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ بالکل شو کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں اس طرح کی ہندتوا پالیسیز ان کے آگے لوگ جھکتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہندوستان کا جو سمویدھان یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے اس کو بالکل اپ ہولڈ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ممبئی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے بڑا وارن کیا گیا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ خبردار رام مندر سے ریلیٹڈ کسی بھی پروٹیسٹ کے اندر آپ نے حصہ نہیں لینا ہے. رام مندر کو اگر آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو پھر کریں, اگر اس کے خلاف آپ نے مورچہ نکالا تو آپ کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں جی چھتیس گڑھ کے کنکری علاقے کے اندر, انہوں نے بھی کہا جی کہ ہندوتوا ایک گروپ جو تھا وہ ہمارے علاقے میں آیا, انہوں نے سوٹیوں سے سٹکس جو ہیں ان سے ہمیں مارا پیٹا اور ہماری عورتوں کو ہراس کیا. چیزاں بد گئی ہیں جی, چیزاں بہت بد گئی ہیں. جیسے کہ کل بھی کچھ ایکسپرٹس نے انڈیا میں کہا ہے کہ یہ صرف بابری مسجد کو بنا کے رام مندر نہیں بنایا گیا, اب جو سنہری مسجد اور دوسری جو مسجدیں ہیں ان کو بھی گرایا جائے گا. اور آج انہوں نے وہی نعرے لگائے ہیں کہ ہم سینکڑوں ہزاروں مسجدیں گرائیں گے اور اپنے مندر اس پہ بنائیں گے. تو یہ جناب ویری ویری ڈینجرس پریسیڈنس جو ہے وہ ہے. پی ٹی آئی کی خبر ہے, دس پی ٹی آئی از پریس ٹرسٹ آف انڈیا. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی اس خبر کے مطابق مراٹھواڑہ جو ڈویژنل کمشنر کا آفس ہے اس نے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے 1088 فارمرز جو ہیں انہوں نے 8 جو ڈسٹرکٹس ہیں مہاراشٹرا کی اس کے اندر سوئسائڈز جو ہیں 2023 میں کی تھیں. 65 جو تھے یہ زیادہ ہیں کمپیئر ٹو 2022 کا جو ڈیٹا ہے. سب سے زیادہ جو موتیں ہوئی ہیں سوئسائڈ کی جو فارمرز نے کی ہیں وہ بھیڑ کے ایریا میں کی ہیں, جہاں پہ کہ 269 فارمرز نے اپنے سولی پہ چڑھے ہیں. 182 چھترپتی سمبھاجی نگر کے اندر کیا, 177 نندن کے اندر, 171 دھرو شیو کے اندر, 103 جو ہے پربھانی کے اندر کیا ہے. گورنر نے کہا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو 1,00,000 روپے کمپنسیشن دی جائے گی. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جب سے مودی جی کی گورنمنٹ پاور میں سینٹر میں آئی ہے 2014 میں, ایوریج آف 30 فارمرز آر ڈائنگ بائی سوئسائڈ ایوری سنگل ڈے ان انڈیا اکارڈنگ ٹو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو. ایکسپرٹس کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ یہ ہے ڈکلائننگ پبلک انویسٹمنٹس, پرائیویٹائزیشن آف کی انڈسٹریز, اوپننگ آف ایکسٹرنل ٹریڈ, ڈکلائن ان اسٹیٹ سبسڈیز, شرنکنگ فارمر ایگریکلچر کریڈٹس. اس سب کی وجہ سے فارمرز اپنے آپ کو بہت مشکل میں سمجھتے ہیں اور وہ بہت ہی جو ہیویلی سبسڈائز ان کو امپورٹس کی جا رہی ہیں اس کا سامنا ہے اور وہ اپنے آپ کو اب سسٹین نہیں کر سکتے, اس لیے وہ بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو لگا لیں پھانسی اور مر جائیں. ٹھیک ہے جی, رہیے. اچھا جناب, دیپیکا پاڈوکون کے بارے میں ہم نے آپ کو لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ فائٹر کے پروموشن چل رہے ہیں اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ان کی لڑائی ہو گئی ہے جو ان کے ڈائریکٹر ہیں سدھارتھ آنند کے ساتھ. آج سدھارتھ آنند نے ایک انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ گیس کرتے رہتے ہیں, گیس مت کیا کرو, یہ پارٹ آف دا پروموشنل اسٹریٹجی تھی, ہم اس کو تھوڑا دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ تھوڑا سا جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوئے. ٹریلر لانچ پہ بھی ہم نے اسی لیے اس کو پیچھے رکھا تھا اور ہم نے اس کو वैसे लेकिन बुलाया था उस पे तो, लेकिन उसकी चूंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उस दिन वो नहीं आ सकी, लेकिन आज के बाद से यानी कि ट्यूजडे के दिन से आज से लेकर आगे तक जितने भी फिल्म के प्रमोशन होंगे सबके अंदर दीपिका पाडुकोन नजर आएगी। सिद्धार्थ ने कहा कि फाइटर की जो प्रमोशन हैं दीपिका के बगैर अधूरी हैं, हम उसके बगैर नहीं कर सकते, और सबसे पहले मैंने जो है ये ऋतिक रोशन और दीपिका पाडुकोन का जो पेयर सामने लेकर आए हैं लोग बड़े एक्साइटेड हैं और मैं भी एज अ फिल्म मेकर बहुत एक्साइटेड हूं इनको लेके। ठीक है जी, बहन खुश हो। अच्छा जनाब, कंगना रनावत साहिबा जो है उनकी जो अपकमिंग फिल्म है इमरजेंसी, उनका आज उन्होंने एक इंस्टा के ऊपर पोस्टर भी किया है और बिल्कुल वो इंदिरा गांधी लग रही हैं अगर आप उसको देखें तो। इस फिल्म को डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और लिखा भी इन्होंने है। इस पोस्टर में ये इंदिरा गांधी के रूप में नजर आ रही हैं और इसमें उन्होंने कैप्शन दिया है कि अनलॉकिंग द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज डार्केस्ट आवर, और ये फिल्म जो है अब आ रही है June 14, 2024 को। ये इनका सेकेंड डायरेक्टोरियल जो है वो प्रोजेक्ट है। इससे पहले आपको पता ही है कि इन्होंने मणि कर्णिका जो है उसको बनाया था एज डायरेक्टर, और वो कहती है जी कि लोकल और जो इंटरनेशनल टैलेंट है उसने इस फिल्म के ऊपर काम किया है। पहले इस फिल्म ने November 24, 2023 में होना था रिलीज, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज एंड मणि कर्णिका फिल्म्स। और जनाब 96th Oscars 2024 जो है उसकी लिस्ट एक सामने आ गई है और क्रिस्टोफर नोलन की जो ओपनहाइमर है उसको सबसे ज्यादा जो है नॉमिनेशंस मिले हैं, 13 नॉमिनेशंस, जिसमें कि क्रिस्टोफर नोलन को भी एज अ डायरेक्टर मिला है। इससे पहले कभी भी उनको जो है ना कोई उन्होंने जीता नहीं है ऑस्कर, तो लगता है कि इस दफा ये जीत सकते हैं। ये जो ओपनहाइमर में एक्टिंग के लिए सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट को भी किया गया है, नॉमिनेट किया है। बारबी जो है उसको 8 नॉमिनेशंस मिली हैं। रायन गॉसलिंग को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किया जा रहा है। 2 बेस्ट सॉन्ग्स जो हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है वो है व्हाट वाज आई मेड फॉर, आई एम जस्ट केन। इसके अलावा जो द पुअर थिंग्स है उसको 11 नॉमिनेशंस मिले हैं। टू किलर्स ऑफ द मून को 10, और जो 10th टाइम मार्टिन सोर्सेसिस जो है उनको नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट डायरेक्टर। इसके अलावा जो और टॉप फिल्म्स जिनको नॉमिनेट किया है फॉर टॉप फिल्म नॉमिनेशंस के लिए उसमें है होल्ड ओवर, मेस्ट्रो, अमेरिकन फिक्शन, पास्ट लाइव्स, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, अ जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब लोग जो है इसका इंतजार कर रहे हैं। और जनाब आज आई है ICC की मेन्स टेस्ट और ODI टीम ऑफ द ईयर 2023 के नेम, उसमें कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है। व्हाट इज दिस,
आजम भी नहीं है?
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो पाकिस्तानी प्लेयर इन एनी ऑफ द सेट स्क्वाड्स। इसमें जी ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंग्स हैं उनको टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में 42 विकेट्स ली थी। इसके अलावा 5 और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर हैं, और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो मोस्टली इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। ये है ICC मेंस टेस्ट टीम। इसके अंदर हैं उस्मान खाजा, डिमिट करूना रत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, जडेजा, एलेक्स करी, अश्विन, मिशेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड। इसके अलावा जो ODI टीम ऑफ द ईयर है उसको वो कहते हैं जी कि कैप्टन करेंगे रोहित शर्मा, यानी कि उसका नाम है, ठीक है, यू नो, इस स्क्वाड का जो है कैप्टन है रोहित शर्मा, क्योंकि उसने 1255 रन्स इन अ ईयर बनाए और इसको डोमिनेट किया है इंडियन प्लेयर्स ने। इसके अंदर जो बाकी के लोग हैं ODI टीम ऑफ द ईयर के अंदर वो हैं कोहली, शुभमन गिल, सिराज, कुलदीप यादव, शामी एंड आई मीन ऑफकोर्स ये कैप्टन जो है। तो जनाब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है जी। अच्छा जी, और जनाब ये जो चल रहा है AFC एशियन कप 2023, इसके अंदर आज सीरिया ने बीट किया इंडिया को 1-0 से इन द फाइनल ग्रुप बी मैच एट अल बायत स्टेडियम इन अल खोर कतर, और ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान जो है उन्होंने ड्रॉ किया 1-1 से इन द अदर ग्रुप। अब उज्बेकिस्तान जो है वो फिनिश कर रहा है सेकेंड पे ऑन 5 पॉइंट्स, और इसमें उनको ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये अब लास्ट 16 में पहुंच गए हैं। सीरिया जो है इट हैज फिनिश्ड थर्ड विथ 4 पॉइंट्स। इंडिया जो है बिल्कुल ग्रुप बी के बॉटम पे है इस वक्त, ठीक है जी। एंड एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, विराट कोहली साहब जो हैं वो जो फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड है उसमें नजर नहीं आएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन्स, उन्होंने जो है पहले मिस किया था जो ओपनिंग गेम थी T20 सीरीज की अगेंस्ट अफगानिस्तान, और यही उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ पर्सनल रीजन्स हैं। फिर वो सेकेंड और थर्ड मैच के लिए वापस आए थे। 5-मैच सीरीज जो अब शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ इन हैदराबाद ऑन थर्सडे, तो बीसीसीआई ने कहा है कि बिल्कुल हम उसके डिसीजन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं। उसने कैप्टन को भी बताया और बोर्ड को भी बताया है, और बोर्ड और टीम मैनेजमेंट जो है बिल्कुल उसके डिसीजन में उसको ये सपोर्ट करेगी। खुश है भाई, अब
जरूर सपोर्ट करेगी।
हाँ जी,
ये थी हमारी आज की खबरें।
ये खबरें थी
और बगैर खबरें इंशाल्लाह ताला कल फिर
अगर मैं कल
जिंदगी कल फिर आपके लिए हाजिर होगी।
महीना का आखिर आ रहा है ना मजद भाई।
और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डर लगता है। शादी जी थैंक यू सो मच।
थैंक यू मच भाई, आई सी यू टुमारो। थैंक यू,
इंशाल्लाह आई सी यू टुमारो। अब मैं लिए चलता हूँ आपको कहां पर, प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद। एंजॉय कीजिए, बखिया की बातें इंशाल्लाह ताला कल। उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
देखते ही तेरा हो गया, आंखों में तू मेरे ख्वाबों में तू है, यादों के मैं के गुलाबों में तू है, वो सहमी नजर चाहत भी है मेरे महबूब में, वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में। अपना ख्याल तुम रखना।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। एक हम है जिसे प्यार कर